दिन भर तारीख 27 अगस्त दिन रविवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। राष्ट्रीय जनता दल की रैली में एक मंच पर आए शरद, अखिलेश, ममता, माया की पार्टी ने किया किनारा। लालू बोले,
सोना मोदी जी, सोना मिसाल देश, हम झुकने वाले नहीं हैं।
बलात्कार मामले में दोषी ठहराए गए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को कल सुनाई जाएगी सजा। रोहतक जेल समेत पूरे हरियाणा में कड़ी सुरक्षा।
मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कल वहां पे शांतिपूर्ण तरीके से कोर्ट की कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा।
और विवेचना में बात हरियाणा के विकास पुरुष कहे जाने वाले बंसीलाल की, जिनकी शख्सियत में थे कई विरोधाभासी रंग। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कंडपाल से। बिहार के पटना में आज बीजेपी भगाओ देश बचाओ रैली में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि सृजन घोटाले की ओर उन्होंने इशारा किया और कहा कि नीतीश कुमार को पता था कि घोटाला खुलने वाला है, इसलिए उन्होंने पाला बदल लिया। इस रैली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंची थी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जनता को धोखा दिया है और अब बिहार की जनता उन्हें धोखा देगी। इस रैली कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी नहीं पहुंचे, लेकिन कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद इस रैली में मौजूद थे। हरियाणा के सिरसा में डेरा सच्चा सौदा के मुख्यालय में रह रहे गुरमीत राम रहीम के समर्थकों ने धीरे धीरे डेरा छोड़ना शुरू कर दिया है। गुरमीत राम रहीम को बलात्कार मामले में दोषी पाए जाने के बाद हरियाणा में हिंसा में 36 लोगों की मौत हो गई थी। कल गुरमीत राम रहीम को रोहतक जेल में बलात्कार के मामले में सजा सुनाई जानी है। पुलिस ने बताया कि रोहतक में जेल तक जाने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया गया है। बलात्कार के इस मामले में गुरमीत राम रहीम को 7 साल जेल की सजा हो सकती है और हिंसा की आशंका को लेकर चिंता बनी हुई है। म्यांमार के राखिन प्रांत में 2 दिन से जारी हिंसा के बाद हजारों लोग अपने घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हुए हैं। अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुस्लिम लोग सीमा पार कर बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीमा पर तैनात बांग्लादेशी सुरक्षा बल रोहिंग्या मुस्लिमों को वापस भेज रहे हैं। शुक्रवार को रोहिंग्या मुस्लिम कट्टरपंथियों ने 30 पुलिस थानों पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद से वहां हिंसा जारी है। कल भी हिंसक झड़पें होने की खबरें आई थी। बांग्लादेश में बॉर्डर गार्ड लेफ्टिनेंट कर्नल मंजरूल हसन खान ने वहां के बारे में ये बताया।
दिस मॉर्निंग वी हैव हर्ड ह्यूज नंबर ऑफ फायरिंग ऑन द अदर्स ऑफ द बॉर्डर।
आज सुबह भी हमने भारी गोलीबारी की आवाज सुनी है, कई धमाकों की आवाजें भी थी। मुझे लगता है कि इसी वजह से आज सुबह फिर से इस तरफ बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुस्लिम लोग आने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग म्यांमार की सीमा पर बाढ़ पार करके जीरो लाइन की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग अभी जीरो लाइन पर इंतजार कर रहे हैं। वो डरे हुए हैं और लगता है कि वो जान बचाने के लिए वहां से भागे हैं। ये थे लेफ्टिनेंट कर्नल मंजरूल हसन खान के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका के टेक्सास में चक्रवात हार्वी के बाद आई बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। आपात सेवा कर्मी बाढ़ के कारण गाड़ियों और घरों में फंसे लोगों को निकालने में लगे हुए हैं। इस बीच ह्यूस्टन और कॉर्पस क्रिस्टी शहर भारी बारिश और तेज हवाओं की मार झेल रहे हैं। इन शहरों में बिजली भी नहीं है। हैरिस काउंटी के शेरिफ ने बताया है कि 2 लोगों की अब तक वहां पर मौत हो चुकी है और ह्यूस्टन का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बंद किया गया है। शहर के मेयर चार्ल्स जे वैक्स ने ये बताया। सभी सुविधाएं बाधित हुई हैं। संचार, इंटरनेट, फोन लाइन और मोबाइल नेटवर्क बाधित है। टीमें नुकसान का जायजा लेने में लगी हैं। सड़कों और मैदानों को साफ किया जा रहा है, लेकिन लोगों तक राहत पहुंचाने की हमारी क्षमता भी बाधित हुई है और हमारे पास सीमित संसाधन है। ये थे चार्ल्स जे वैक्स के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अफगानिस्तान में अमरीकी और नेटो बलों के कमांडर जनरल जॉन निकल्सन ने कहा है कि अमरीका जानता है कि अफगानिस्तान के तालिबान गुट के नेता पाकिस्तान से काम कर रहे हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के टीवी चैनलों पर दिए एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान को क्वेटा और पेशावर जैसे शहरों में मौजूद तालिबान नेताओं से निपटना होगा। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन और इस्लामाबाद के बीच इस पर बातचीत जारी है। कुछ दिन पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को लेकर अपनी नई रणनीति की घोषणा की थी और कहा था कि पाकिस्तान उन चरमपंथियों को पनाह दे रहा है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव।
लालू का ऐसा खून है कि फांसी पर लटक जाएंगे, लेकिन भाजपा आप सब परिवार से समझौता करने वाले नहीं है।
लालू प्रसाद यादव। राष्ट्रीय जनता दल ने आज बिहार की राजधानी पटना में एक रैली का आयोजन किया, जहां पार्टी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव पूरे फॉर्म में दिखे। रैली में ममता बनर्जी भी शरीक हुई।
आने वाले दिन कैसे रहेंगे? ओ तो बीजेपी वाला, आप आसमान देखते हैं ना? देखो आसमान भी लालू जी का साथ दिया है।
ममता कह रही थी कि आसमान ने भी लालू जी का साथ दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मंच पर थे।
ये क्रांतिकारी धरती है, संघर्ष की धरती है। अगर रोक सकती है ये धरती, तो बीजेपी को भी रोक सकती है ये धरती।
लालू यादव के मुताबिक इस रैली में कुल 22 दलों के प्रतिनिधि शामिल थे। रैली में जनता दल यूनाइटेड से अलग लाइन लेने वाले शरद यादव भी थे और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद भी, लेकिन बीमार होने की वजह से कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी रैली में नहीं आई। बीएसपी प्रमुख मायावती भी मौजूद नहीं थी और इसने विपक्ष की एकता पर सवालिया निशान लगाया। रैली के वक्त हमारे साथी मनीष शांडिल्य पटना के गांधी मैदान में ही मौजूद थे, सुनिए उनकी रिपोर्ट।
राजद की देश बचाओ भाजपा भगाओ रैली मौसम की आंख मिचौने के बीच पटना में संपन्न हुई। करीब 12 बजे शुरू हुई रैली 5 बजे तक चली। रैली में युवाओं की अच्छी भागीदारी देखने को मिली। आज लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने मंच से भाजपा के खिलाफ शंखनाद किया, तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की गैरहाजिरी में उनका रिकॉर्डेड भाषण बजाया गया, जबकि राहुल गांधी का भाषण पढ़ा गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब मंच पर आए तो मैदान में मौजूद लोगों ने पूरे गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने अपने भाषण में नीतीश कुमार को डीएनए वाला चाचा कहा और दावा किया कि बिहार से जो आवाज उठी है वह दूर तलक जाएगी।
तो ये तो 11 करोड़ की जनता की आवाज है, उत्तर प्रदेश 22 करोड़ का है। आपकी आवाज से आवाज मिलाएगा और बंगाल से लेकर के देश आवाज देगा।
जदयू की चेतावनी के बावजूद वरिष्ठ नेता शरद यादव ने रैली में शिरकत की। उन्होंने बिहार में गठबंधन टूटने पर अफसोस जताया, लेकिन साथ ही ऐलान किया कि अब वे पूरे देश में भाजपा के खिलाफ गठबंधन बनाने के लिए खुद को झोंक देंगे।
गठबंधन टूट गया, लेकिन मैं इस मैदान में कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने तोड़ा है, मेरा उनसे कोई बुराई नहीं।
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रैली के प्रमुख आकर्षण में से एक थी। उनके बड़े बड़े कटआउट भी मैदान में लगाए गए थे। ममता ने शेरोशायरी भरे अपने अंदाज में भाजपा पर निशाना साधा।
ना उनको को संभाल सकते हो, ना राजस्थान को संभाल सकते हो, ना मध्य प्रदेश को किसान को गोली करके मार देते हैं संभालने नहीं सकते हो। और सब को पीछा पड़ा है, हर जगह से सब हट जाएगा, खाली बीजेपी रहेगा। आने वाला दिन में वो एक ही है, सब बीजेपी
जैसा कि अपेक्षित था। रैली को अंत में लालू यादव ने संबोधित किया। उन्होंने करीब आधे घंटे तक अपनी बात रखी, लेकिन इस दौरान अपना लगभग पूरा समय उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला करने और बिहार के अलग अलग वर्गों समूहों को आकर्षित करने में लगाया। जिस मुद्दे पर लालू ने यह रैली बुलाई थी, उस पर उन्होंने ना के बराबर अपनी बात रखी।
हमारे घर पर आया था, बोला कि अरे क्या है, हमको आशीर्वाद दे दीजिए एक बार। भाई ये आपका पैतरा लेने आएगा, फिर भी आया कि अध्यक्ष हमारा लाना चाहिए अध्यक्ष।
आज की रैली इस मायने में सफल कही जा सकती है कि इसमें जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक के करीब 2 दर्जन दलों ने शिरकत की। रैली लोगों की भागीदारी के लिहाज से भी कामयाब रही, लेकिन जिस मकसद से यह रैली बुलाई गई थी, उस मंजिल की ओर बढ़ने का अगला कदम क्या होगा, इस बारे में रैली से कोई ठोस कार्यक्रम निकलकर सामने नहीं आया। मनीष शांडिल्य, बीबीसी पटना।
रैली के बाद जनता दल यूनाइटेड के सांसद केसी त्यागी ने बीबीसी संवाददाता आदर्श राठौर से बातचीत में कहा कि भीड़ जुटाने का मतलब ये नहीं है कि आप सही हैं। ये बातचीत आप सुबह के कार्यक्रम में सुन सकते हैं। फिलहाल सुनाते हैं कि रैली में आए लोगों का क्या कहना था।
मैं सर ये सोच कर आया था कि जिस तरह से पूरे भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों पर कुठाराघात किया जा रहा है एनडीए के द्वारा, उसी के विरोध में मैं आया था।
लालू जी पर आरोप लगते हैं, इसलिए लगते हैं पूरे इकलौते भारत में पूरे ही हैं जो नेता की अपने विपक्षी को कुछ बोल सके कुछ कर सके दावे के साथ करते हैं सर, तो ऐसे लोग पे आरोप लगेंगे क्योंकि आपके पास यूनिटी है
कि हम लोग वोट उनको दिया, हम लोगों के साथ इतना जल्दी उनको हम लोगों से नहीं निकलना था, गद्दारी नहीं करना थी।
आरजेडी की रैली के बाद मैंने वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामाशेषन से बात की और सबसे पहले पूछा कि रैली में भीड़ तो जुटी लेकिन मंच से विपक्ष की जिस एकता का संदेश देने का दावा किया जा रहा था क्या वो मकसद पूरा होता दिखा? सुनिए।
आप अगर विपक्ष की बात करें तो मायावती का चेहरा नहीं था वहाँ पे, सोनिया गांधी तो खैर बीमार है वो नहीं आ पाई, राहुल गांधी नहीं थे, येचुरी नहीं थे सीपीएम से। तो आप अगर विपक्ष की एकता की बात कर रहे हैं तो इसका केंद्र बिंदु एक तरह से उत्तर प्रदेश बनता है और उत्तर प्रदेश में जब तक अखिलेश और मायावती को नहीं मिलाए एक पैक्ट ना बनाए तो ये विपक्ष की जो एकता है उसको एक तरह से खोखला साबित होता है। हाँ आपने सही कहा कि भीड़ काफी अच्छा था जो हमने टीवी वगैरह में देखा, लेकिन ये लालू जी का व्यक्तिगत मोबिलाइजेशन था, इसमें और कोई पार्टी का योगदान नहीं था, तो एक तरह से ये लालू परिवार का शो था और लालू परिवार जो है वो बिहार तक सीमित है, देखा जाए तो वो एक पार्टी है राष्ट्रीय विकल्प के तौर पे। तो ये कहना कि भाजपा हटाओ देश बचाओ का पूरा मुहिम आज पटना से शुरू हुआ है वो बहुत टॉल क्लेम मुझे लगता है, लेकिन बहुत मजबूत भाजपा जहां है केंद्र में और कई प्रदेशों में, विपक्ष जो है कोई ना कोई प्रयास करते जा रही है और ये उसी डायरेक्शन में एक प्रयास है।
जी, लालू यादव ने क्लेम किया कि 22 दल इस रैली में थे और उनका दावा था कि जो दल इस बार नहीं आए वो आगे आएंगे, शरद यादव ने भी कहा कि आगे और दल भी जुड़ेंगे साथ में
जी।
तो इस दावे में आपको कितना दम दिख रहा है?
जहाँ तक विपक्ष की यूनिटी की बात है, एक तो इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में एकजुट होने की कोशिश की पर वहाँ पे अन्य पार्टी टूट गए थे, मुझे यहाँ विपक्ष की एकजुटता दिखाई नहीं देती है। अब हमें देखना पड़ेगा कि अगला वाला जो है रैली या मीटिंग शायद बंगाल में हो, शायद ममता बनर्जी बुलाए, अगर ममता बनर्जी बुलाती है तो वो ममता बनर्जी का शो हो जाएगा। विपक्ष यूनिटी में मुझे जो मेन समस्या दिखाई दे रही है वो लीडरशिप है, कौन सा पार्टी लीडरशिप लेगी, क्योंकि ये जो है ये सब क्षेत्रीय दल हैं, कांग्रेस को आगे आके पूरा लीडरशिप की जो है कमान संभालना पड़ेगा और इस वक्त कांग्रेस में मुझे वो क्षमता बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है।
ये थी राधिका रामाशेषन। अगली खबर हरियाणा से। बलात्कार मामले में दोषी ठहराए गए डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम को सीबीआई की विशेष कोर्ट कल सजा सुनाएगी। सजा सुनाने के लिए रोहतक जेल में ही कोर्ट की कार्रवाई होगी। हरियाणा में आज शांति रही लेकिन सजा के ऐलान को लेकर रोहतक समेत पूरे प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुनिए पंचकुला से रविंद्र सिंह रॉबिन की ये रिपोर्ट।
डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को कल 2:30 बजे रोहतक की जेल में सजा सुनाई जाने वाली है। हरियाणा में कल की स्थिति को लेकर हरियाणा पुलिस और प्रशासन का दावा है कि उन्होंने सुरक्षा के मुकम्मल प्रबंध कर लिए हैं। पुलिस का दावा है कि पिछले 24 घंटे में कोई बड़ी वारदात हरियाणा में नहीं हुई है। पुलिस द्वारा किए गए इंतजामों के बारे में बताते हुए हरियाणा पुलिस प्रमुख बीएस संधू का कहना था,
आज के दिन हरियाणा पुलिस की टॉप प्रायोरिटी कल की होने वाली पेशी की तरफ है जो कि सुनारिया जेल में होनी है रोहतक में, उसके लिए वहाँ पे पूरे पुलिस के और सुरक्षा के प्रबंध किए जा चुके हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कल वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से कोर्ट की कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। पूरा पुलिस बल है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आर्मी को भी स्टैंड बाई वहाँ के लिए रखा हुआ है, लेकिन हमारी पुलिस की अपनी पूरी व्यवस्था है, किसी किस्म की वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी।
पंचकुला में आज जनजीवन सामान्य रहा, हरियाणा के बाकी स्थानों पर भी सिरसा को छोड़कर कहीं पर भी कर्फ्यू नहीं है, लेकिन कल की स्थिति के लिए आर्मी को स्टैंड बाय कर दिया गया है ताकि अगर कोई जरूरत पड़े तो किसी भी तरह की कार्रवाई की जा सके। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मालवा क्षेत्र का दौरा किया और पुलिस को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दे दिए हैं। चाहे दोनों राज्यों की पुलिस शांति बहाली के दावे कर रही है परंतु आम लोगों में अभी भी डर बना हुआ है। बताते चलें इसी बीच 25 अगस्त को हुई पुलिस कार्रवाई में मरने वालों की संख्या 38 हो गई है। 274 जख्मियों में से 17 लोगों को अस्पतालों में दाखिल हैं, बाकियों को इलाज देने के बाद छुट्टी कर दी गई है। बीबीसी हिंदी के लिए रविंदर सिंह रॉबिन पंचकुला से।
और अब वक्त है इस हफ्ते की विवेचना का। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसी लाल को प्रदेश के गांव-गांव में पानी, बिजली और सड़क पहुंचाने के लिए विकास पुरुष कहा जाता था। वहीं उन पर लोकतांत्रिक परंपराओं को दरकिनार कर शासन में मनमानी करने के आरोप भी लगे थे। बंसीलाल की 90वीं जयंती पर उनके जीवन से जुड़े कई पक्षों पर रोशनी डाल रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी रेहान फजल।
अपने अक्खड़पन, रूखे व्यवहार और सख्त लहजे के लिए मशहूर बंसीलाल का दिल कोमल भी हो सकता था, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक बार जब वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, वो सड़क मार्ग से चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहे थे। उनके प्रधान सचिव रहे और बाद में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य बने एसके मिश्रा याद करते हैं।
अम्बाला में एक महिला लेट गई सड़क पे, रो रही थी, गाड़ी रोकती, उसने कहा मेरा बेटा जो है उसको फांसी की सजा हुई थी और उसका पिटीशन, मर्सी पिटीशन रिजेक्ट हो गया और दो रोज में वो एग्जीक्यूट होने लगा। तो बंसीलाल ने कहा इसमें मैं कुछ करने से, तो गवर्नर के पास गया, गवर्नर ने रिजेक्ट कर दिया, दैट्स द लास्ट कोर्ट ऑफ अपील। खैर बड़ी मुश्किल से उसको हटाया। फिर कहने लगे इसके लड़के ने जुर्म किया हो, जो भी किया हो, लेकिन उसको देखा जाए मदर के एंगल से, उसके ऊपर क्या बीत रही है। खैर बात खत्म। अगले रोज अखबार में देखा कि वो प्रिजनर एस्केप कर गया जेल से। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था।
अच्छा।
जेलर बस वहाँ से ट्रांसफर हो गया, बस और कुछ नहीं हुआ।
बंसीलाल के बारे में मशहूर था कि वो एक जगह चैन से नहीं बैठ सकते थे और महीने में 25 दिन हरियाणा के अलग अलग जगहों का दौरा किया करते थे। गांव-गांव में पानी, बिजली और सड़क पहुंचाने के लिए उन्हें हरियाणा का विकास पुरुष भी कहा जाता है। वास्तव में ये उनका एक तरह से जुनून भी था। बंसीलाल यमुना के पानी को हर हालत में दक्षिण हरियाणा के रेतीले टीलों के पार पहुंचाना चाहते थे। हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव और माई इनकाउंटर्स विद थ्री लाल्स ऑफ हरियाणा के लेखक राम वर्मा बताते हैं।
एक जुई उनके एरिया में है तो शाम में वहां तक 7 लिफ्ट लगा के वो नहर गई। जगजीवन राम आए थे पहला जो है उसका उद्घाटन करने, तो भिवानी तो सारा एरिया वहाँ पर था उद्घाटन के लिए। उसने जब बटन दबाया और वो पानी नीचे से ऊपर, आप देखो सारी की सारी जनता जो स्टेज पे देखने के लिए खड़े, जा करके उसमें आधे लोग तो उसमें ही छलांग मार गए। लेडीज ने वो बंसीलाल पे गाने बनाए कि यानी भगीरथ लाया था तो तू हमारा भगीरथ है, इस तरह के गाने बनाए। तो ये फिर उसने बाद में सारा बाकी एरिया को भी आगे, फिर वो नारनौल तक, अब जो है सारा हरियाणा का कोई एरिया नहीं है जिसमें लिफ्टर कनाल उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई।
आज मुल जाए तेरे दोबारा, आपने आके खिला दिए, खारी पानी ने तरसे थे वे लड़कियां नीचे नला दिए, सारे हरियाणा में तन्ने बिजली के कनेक्शन दिला दिए, ट्यूबवेल लोहारू सतनाली की चला।
हरियाणा के हर गांव में बिजली पहुंचाने का बीड़ा भी बंसीलाल ने उठाया था और वो भी बिना किसी अतिरिक्त बजट के।
बिजली बोर्ड वाले उसको कहते हैं कि नहीं ये हमारी लाइन में नहीं आता है, तुम्हारे लिए कनेक्शन लेने के लिए और उसको वहाँ पे अलग से पैसा, भाई तुम 5,000 रुपये दे तो तुम्हारे पास लाइन ले जाएंगे। तो बंसीलाल ने चारों तरफ देखा कि बड़ा उनके पास सरप्लस था, भाखड़ा में हमारा शेयर था और उसके वजह से वीवर पावर सरप्लस, मेरे ख्याल से 50,000 ट्यूबवेल के लिए जो अपना कनेक्शन के लिए किसान बैठे हुए थे उनको मिल नहीं रहा था, वो और पैसा दें 5-5, उन दिनों बहुत बड़ी बात थी कि 5-7,000 खुद अपनी देख कर लगाएं कनेक्शन के लिए। तो बंसीलाल ने कहा कि अच्छा तुम ये करो कि सारे गांव में बिजली पहुंचा दो, चाहे वहां कोई डिमांड नहीं है, तुम तो वहां खंभा खड़ा कर दो, एक लट्टू जला दो। उससे क्या हुआ कि सारे के सारे एलिजिबल हो गए, मेनली रूरल इलेक्ट्रिक, वहां कोई डिमांड नहीं थी गांव में कि हमको बिजली चाहिए कोई, और कईयों ने लिए भी नहीं, बाद में खैर ले लिया वो अलग बात, लेकिन उसने इसलिए कि फिर वो सारों का एलिजिबल हो गया। तो इससे बिजली बोर्ड ये ना कह पाए कि अब तुम्हारे खर्चे पे ले जाएंगे, उनकी लाइनें सब जगह पहुंच गई।
पानी, बिजली और सड़क के अलावा हरियाणा को भारत के पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने का श्रेय भी बंसीलाल को दिया जाता है। उसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है।
बंसीलाल ने मिश्रा को कहा कि देखो मिश्रा जी, मेरे को मान लो पेशाब आता, कार रोकी, आके झाड़ी के पास गए, अपना मार दिया, मान लो कि तो आपकी वाइफ जा रही है साथ में, वो कहाँ जाएगी? तो मिश्रा जी ने कहा ये तो मैंने नहीं सोचा अभी तक। कहते नहीं तो ये सोचो, यहाँ पे ये बीच की जगह है, लोग आते हैं चंडीगढ़ से या ऊपर से कम यहाँ पर एक छोटी सी जगह बना दो जहाँ चाय मिले और अच्छे टॉयलेट्स हों। तो फिर मिश्रा जी ने सोचा कि वहाँ पे गड़े थे, उसके साथ साथ नहर के साथ साथ पूरा गढ़ा चारों तरफ गड़े खोद दिए। सो कहने लगे कि तो यहाँ तो एक झील भी बन सकती है बढ़िया। आगे तो वो तुम्हारी मर्जी है, झील वील बनाना कुछ बनाओ, लेकिन यहाँ पे टॉयलेट्स, साफ टॉयलेट और अच्छी चाय का लोग बैठ करके चाय पी लें और ऐसी एक अच्छी सी जगह बना दो यहाँ पे रुकने के लिए। तो दिस वॉज द बर्थ ऑफ हरियाणा टूरिज्म।
बंसीलाल को अक्सर इस बात में दिलचस्पी रहती थी कि उनके विरोधी उनके बारे में क्या सोच रहे हैं।
भगवत दयाल चीफ मिनिस्टर थे और इलेक्शंस हो रहे थे असेंबली के लिए, तो हिसार में आए तो भगवत दयाल मुझे पसंद करते थे काफ़ी, मुझे पंडित जी कहते थे, बड़ा मुझे एम्बेरसमेंट लगता था। तो खैर उन्होंने कहा कि ऐसा है इलेक्शन है और आप तो बड़ा फेयर करेंगे, लेकिन दो लोग जो हैं उनको हराना है, बंसीलाल और देवीलाल, ये नहीं आने चाहिए। तो हमने कहा हराना जीतना तो मेरे हाथ में नहीं है, ये तो जनता की हाथ में, और इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जब मैंने बंसीलाल को ज्वाइन किया तो एक लोग मुझसे पूछते हैं तुम्हारी ऐसी बात हुई थी भगवत दयाल से, तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ कैसे पता चल गया उनको, क्योंकि वहाँ तो कोई था ही नहीं। तब फिर पता चला कि जो बेरर था चाय सर्व कर रहा था उसने ये सुन लिया और उसने बंसीलाल को ये कन्वे कर दिया। मैं दिल्ली आ गया था, होम मिनिस्ट्री में डिप्टी सेक्रेटरी था और एक महीना मुझे हुआ था, उसी रोज़ वो नया मकान लिया था तो पार्टी दी थी। कोई 12 बजे मेरे पास टेलीफोन आया बंसीलाल का, अच्छा वो इलेक्ट हो गए थे MLA, तो मैंने उनको तार भेजा कि आई होप कि आपको कैबिनेट में ले लिया जाए एज ए मिनिस्टर। तो 12 बजे टेलीफोन आया, कहने लगे मैं मिलना चाहता हूँ। तो हमने कहा इस वक्त क्या हो गया? कहने लगे मुझे चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो गया और आपको आना है मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी।
इंदिरा गांधी और संजय गांधी के प्रति उनकी निष्ठा संपूर्ण थी। हरियाणा में मारुति लिमिटेड को जमीन दिलवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसका बाद में उन्हें राजनीतिक फायदा भी मिला। कुमी कपूर अपनी किताब द एमरजेंसी अ पर्सनल हिस्ट्री में लिखती हैं।
बंसीलाल ने अपने वरिष्ठ अफसरों को हुक्म दिया कि वो दिल्ली जाकर संजय गांधी को उनकी मारुति फैक्ट्री के लिए जमीन दिलवाने में मदद करें। मारुति के लिए जिस जमीन को चुना गया वो खेती योग्य उपजाऊ जमीन थी। वहाँ से हथियारों का एक डिपो और एक हवाई पट्टी मात्र 1,000 गज की दूरी पर थी। उन्होंने संजय गांधी की मारुति कंपनी को 290 एकड़ जमीन का कब्जा दिया। मारुति को जमीन 10,000 रुपए एकड़ के हिसाब से बेची गई, जबकि बगल वाली जमीनों का दाम 35,000 रुपए एकड़ था। जमीन के दाम को 18 किश्तों में अदा किया जाना था, लेकिन मारुति ने 2 किश्तों के बाद ही हरियाणा सरकार को बकाया देना बंद कर दिया था।
बंसीलाल पर लोकतांत्रिक परंपराओं को दरकिनार कर मनमानी से शासन करने का आरोप भी लगा। गुजरात और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल बीके नेहरू ने अपनी आत्मकथा नाइस गाइस फिनिश सेकंड में लिखा है।
भारत के कुछ जमीन से जुड़े राजनीतिज्ञों में से एक बंसीलाल को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि भारत का संविधान क्या कहता है। उन्होंने ठेठ हरियाणवी अंदाज में मुझसे कहा, अरे नेहरू साहब ये सब इलेक्शन फिलेक्शन का झगड़ा खत्म कीजिए, मैं तो कहता हूँ बहन जी को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बना दीजिए, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है।
बंसीलाल राजनीति में इतने लिप्त थे कि उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। एक बार ललित नारायण मिश्र ने जब उन्हें अपने यहाँ दिए गए भोज में राज कपूर से मिलवाया तो वो उन्हें पहचान तक नहीं पाए।
बंसीलाल ने मूवी से कोई ताल्लुक नहीं, पिछले सबसे पहले जो लास्ट मूवी देखी तो 1940 में डॉक्टर कोटनिस कमर कहानी, तो जब राज कपूर पाए तो उनके राज कपूर हैं तो उनके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। अरे राज कपूर करे, अच्छा आपका बिजनेस है फरीदाबाद में? कहते नहीं नहीं नहीं, अच्छा अच्छा तो क्या करते हैं आप? कहते मैं एक्टर हूँ। अच्छा वहाँ गाँव नौटंकी में करते हैं? क्या तुम्हें इतना नहीं मालूम?
बंसीलाल को गुस्सा भी खूब आता था, इसका स्वाद उनके सचिव रहे राम वर्मा को भी चखना पड़ा था।
हमारे यहाँ हरियाणा में कोई वो स्टेशन नहीं था रेडियो का, तो यहीं दिल्ली से ही प्रसारण होता था। मैं उनके साथ आया था और वो स्क्रिप्ट बना के लाया था, तो स्क्रिप्ट उनको 2 दिन पहले दे भी दी थी, तो कहते सारा तुमने गलत लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है तुमने? मैंने कहा सर क्या गलत है? कहते देखो ये तुमने लिखा है कि बिजली जो है 2340 गांव में चली गई, कहते मैंने अभी सानी से बात की है, चेयरमैन बिजली बोर्ड, वो कहता है 2550 में गई है, तुमने ये कैसे सारा गलत लिखा हुआ है। और ये मैंने उससे चीफ इंजीनियर से बात की है, रोड वाले से, मिस्टर आईसी गुप्ता थे, उससे मैंने अभी बात की है, तुमने ये जो लिखा है उससे कोई 50 गांव में ज़्यादा में तो तुमने सारा गलत लिखा हुआ है, कैसे बोला है? मैंने कहा सर जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही होगा। और मैंने कहा अब जो आपने बात कर ली उसके बाद भी शायद 4 गाँव में और बिजली लग गई होगी। तो मैंने कहा खास बात यह है कि ये तो डायनेमिक फिगर है, मैं जो तैयार करता हूँ वो उनकी बात से बात करके नहीं करता, दे हैव टू सेंड इट टू मी इन राइटिंग। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इसको काट दीजिए अपना, वो बोलिए सही है जो इसमें कुछ तो उसको काट के बोल दीजिए। तो फिर वो बोल दिया उन्होंने, लेकिन शुंगलू ने कहा कि कुछ ये 2 सेंटेंस ज़रा आप दोबारा बोल दीजिए। तो फिर उन्होंने कहा ये तो मेरे को अभी अभी तो स्क्रिप्ट दिया है, क्या करें? कहते नहीं कोई बात नहीं आप। तो खैर उन्होंने बोल दिए, मैं हरियाणा भवन में वहाँ तक उनके साथ ही उनके कार में गया था। तो मेरे से कहते हैं उतर के, कहते देखो मिश्रा जी से बोल के और कोई नई पोस्ट तुम्हें जो अच्छा लगे वो ले लेना। मैंने कहा सर मैंने आज तक न किसी को बोला मेरे को क्या पोस्ट चाहिए, आपको जहाँ मर्जी आए वहाँ लगा दीजिए।
बंसीलाल अपने बेटे की शादी में बारात में खुद नहीं गए थे क्योंकि वो कट्टर आर्य समाजी थे और सादी जिंदगी जीने में यकीन रखते थे। शादी के बाद उन्होंने एक प्रीति भोज जरूर दिया जिसमें उन्होंने उस समय भिवानी में डिप्टी कमिश्नर के पद पर काम कर रहे राम वर्मा को भी आमंत्रित किया था।
माय वाइफ सावित्री वो शी वाज अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ अ पर्सन, अपना हार वार पहन के नहीं गई। तो जब वो उन्होंने देखा कहते रे छोरी तू तो नागी बुची आ गई you know, she tells the wife of the deputy commissioner, she didn't understand, उनको कुछ ज्यादा हरियाणवी आती भी नहीं थी, मेरे साथ आके थे। और उसको एक वो अपना यहाँ पे ये दे दिया, ये पहन, अपने हाथ से पहना दिया, छोटा मोटा हार ही होगा सो, लेकिन निकाल के अपना कहते ये तो पहन लिया, मेरे पास हुआ आई कहते ये बड़ी बदतमीजी है, कमाल है ऐसी, कहते चलो यहाँ से। माई वाइफ बनकर कोई बात नहीं, मैंने कहा ये अपनी बेटी को भी ऐसे ही कहती। तो वी स्टेड ऑन, तो जाते वक्त वो गई, मैं भी गया साथ, कहते हैं ये लो आप, नहीं कहता वापस थोड़ी लेना है, कहते हैं नहीं नहीं, कहते नहीं बेटा तू मेरी बेटी है। शी रिफ्यूज टू टेक इट बैक एंड माय वाइफ सेज कमाल की लेडी है, वेरी सिंपल लेडी।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
विवेचना पर आपकी राय का हमें रहेगा इंतजार। और अब रुख खेल के मैदान का, मौजूद है आदेश कुमार गुप्त। आदेश जी आपकी नजरें बैडमिंटन कोर्ट पर।
जी हाँ, ग्लासगो में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला चल रहा है। भारत की पीवी सिंधु और सातवीं वरीयता हासिल जापान की नोजोमी ओकुहारा के बीच दोनों ही खिलाड़ी पहली बार विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे। हालांकि भारत की साइना नेहवाल पिछली बार 2015 में फाइनल मुकाबले भी थी जहां वो हारी थी। और फिलहाल ताजा समाचार ये कि थोड़ी देर पहले नोजोमी ओकुहारा ने पहला सेट 21-19 से अपने नाम किया। हालांकि कि एक समय साइना नेहवाल के पास 3-4 अंक की बढ़त थी,
सिंधु के पास आप कहना चाह रहे हैं,
बहुत जबरदस्त वापसी की। और क्रिकेट के श्रोताओं को भी बता दें कि आज भारत के सामने जीत के लिए 218 रनों का लक्ष्य है और थोड़ी देर पहले भारत का स्कोर 13 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट खोकर 57 रन था। और इस
भारत के सामने सीरीज जीतने की चुनौती है, लेकिन आपकी नजरें सिंधु के मैच पर ज्यादा रहेंगी, क्या उम्मीद लग रही है आपको?
जी देखिए, कल जिस तरह से सेमीफाइनल मुकाबला जीता था लेकिन 2:30 बजे वो मुकाबला समाप्त हुआ था, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आराम कम मिला है। दूसरी तरफ ओकुहारा का मुकाबला थोड़ा पहले था और निश्चित रूप से दबाव दोनों ही खिलाड़ियों पर है, लेकिन सिंधु वापसी के लिए जाने जाती है तो उम्मीद की जानी चाहिए।
सुबह आदेश जी आपसे जानेंगे क्या रहा मैच का हाल। शुक्रिया आदेश जी। और अब मुख्य समाचार सुन लेते हैं हरिता कांडपाल से।
बीबीसी समाचार। बिहार के पटना में आज बीजेपी भगाओ देश बचाओ रैली में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। रैली में ममता बनर्जी भी शामिल हुई। हरियाणा के सिरसा में डेरा सच्चा सौदा के मुख्यालय में रह रहे गुरमीत राम रहीम के समर्थकों ने धीरे धीरे डेरा छोड़ना शुरू किया। रोहतक में कल जेल में ही गुरमीत राम रहीम को सजा सुनाई जाएगी। म्यांमार के राखिन प्रांत में 2 दिन से जारी हिंसा के बाद हजारों लोग अपने घर छोड़कर भागने को मजबूर हुए हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे तिलक राज भाटिया। फेसबुक लाइव आप तक पहुंचाया सिंधु वासनी त्रिपाठी ने। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।